हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहां हजारों कहानियां हैं आपके लिए। डॉक्टर के जाने के बाद वेद खुद शिवांशा के लिए खाना लेकर आया और उसे अपनी आंखों के सामने बैठाकर खाना खिला रहा था। ऐसा नहीं था कि शिवांशा को पिछले 2-3 दिनों से बुरे हाल में देखकर वेद को उस पर तरस आ गया था या उसकी जान लेने का इरादा उसने छोड़ दिया था, पर वो इतना बेदिल नहीं था कि अपने घर रह रहे किसी शख्स को भूखा रहने दे। शिवांशा को खाना खाते देखकर वेद के दिल को एक सुकून महसूस हो रहा था। वेद चुपचाप खड़े शिवांशा को देख ही रहा था कि तभी नीचे से एक बूढ़ी औरत की तेज आवाज आई, जिसे सुनकर शिवांशा के हाथ रुक गए थे। उसने घबराकर वेद की तरफ देखा। मेरी दादी सा हैं, तुम कंटिन्यू करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि वो तुम्हें देखने के लिए इस कमरे में आए या तुम्हें नीचे आना पड़े, तो अपनी साड़ी को ठीक कर लेना। तुमसे ज्यादा बेहतर तरीके से तो यहाँ के हाउस हेल्पर रहते हैं। वेद ने उसे तंज कसा और फिर कमरे से बाहर आ गया। पहले जहां बाकी चौहान फैमिली वेद के कमरे से बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी, वहीं अब वो सारे नीचे उनकी दादी सा गायत्री देवी के पास पहुंच चुके थे। वेद भी झुंझलाहट भरे चेहरे के साथ नीचे आ रहा था। वहीं गायत्री देवी, जो उम्र में लगभग 85 साल के आसपास थीं, इस वक्त व्हीलचेयर पर थीं। उन्होंने ऑफ वाइट कलर की सैटिन की साड़ी पहनी थी, जिसका पल्लू उन्होंने सिर पर ले रखा था। गले में सोने के मोतियों की माला और हाथ में बड़े बड़े खानदानी कंगन पहने, इस उम्र में भी वो अच्छा खासा दबदबा रखती थीं। जैसे ही वंश, आराध्या और नव्यांशी नीचे आए, गायत्री देवी ने उन्हें देखकर सख्त आवाज में कहा, बाकी सबसे तो तुम लोगों ने रिश्ता तोड़ रखा है, अब क्या मुझे भी बेगाना करने का सोच रखा है? वेद के लिए इतने अच्छे रिश्ते भिजवाए, लेकिन उसने किससे शादी की है? ना कोई खानदान है और ना ही कुछ और अता पता। बहू का गृह प्रवेश तक कर दिया, लेकिन ऐसे नहीं कि दादी को घर बुलाकर एक बार बहू को दिखा दिया जाए। गायत्री देवी उन सबको ताने सुनाने लगी। तभी नव्यांशी आगे आई और धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, दादी, रिश्ते हमने नहीं, आप लोगों ने तोड़े हैं। चौहान फैमिली के लिए तो वैसे भी मेरे पापा हमेशा से सौतेले थे, तो उन्होंने हमें भी कभी अपना नहीं समझा। कैसी बातें कर रही हो तुम लड़की, अपने दादाजी के नियत पर उंगली उठा रही हो? भले ही तेरा बाप मेरे पहले पति का बेटा था, लेकिन उन्होंने उसे अपने बेटे की तरह पाला। दिख नहीं रहा, चौहान खानदान की आधे से ज्यादा तुम लोगों के पास है, अभी भी तुम सौतेलेपन की बात कर रही हो? गायत्री देवी उसे डांटते हुए बोली। वंश ने सिर हिलाया और जवाब में कहा, हाँ, वही तो, आप लोगों से हजम नहीं हो रहा कि दादाजी ने अपने सगे बेटे के बजाय अपनी पत्नी के बेटे को ज्यादा प्रॉपर्टी कैसे दे दी। उन लोगों की जलन तो समझ आती है दादी, लेकिन मेरे पापा आपके सगे बेटे थे, आप भी अपने दूसरे बेटे के पक्ष में जाकर खड़ी हो गईं। रिश्ता हमने नहीं, आपने हमसे तोड़ा है। जब कोई रिश्ता ही नहीं तो हम भाभी को आपका आशीर्वाद क्यों दिलवाएं? देखो देखो, कैसे मुझे आंखें दिखा रहा है, गायत्री देवी हाथ हवा में नचाते हुए बोली। मेरे लिए मेरे दोनों बेटे एक समान थे, तो मैं यही चाहती थी कि दोनों को उनके बराबर हक मिले। अब तेरे ही बाप के मन में लालच आ गया था, जो उसने अपने छोटे भाई को एकदम ही दरकिनार कर दिया, तो क्या माँ होने के नाते मैं उसका साथ नहीं देती? गायत्री देवी की बातों से साफ था कि उनके आपसी रिश्ते बहुत उलझे हुए थे, यहाँ तक कि वो एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। गीतिका और अंकुश गायत्री देवी के पीछे ही खड़े थे। गीतिका गायत्री देवी के दूसरे बेटे की ही बेटी थी। आराध्या भी उनकी तरह चुपचाप वहां खड़ी उनकी बहस सुन रही थी। गायत्री देवी के इतना कहने के बाद भी वंश ने उन्हें अनसुना करते हुए कहा, आप यहां आकर कितने भी ताने मार लीजिए या हमें बुरा भला कह लीजिए, पर सच ये है कि हमारे बीच ऐसा रिश्ता नहीं है कि हम हमारी खुशियों में आपको शामिल करें। तुम मुझे बुलाओ या ना बुलाओ, लेकिन मैं अपनी बड़ी बहू का चेहरा जरूर देखकर जाऊंगी। मुझे भी तो पता चले आखिर वेद ने किससे शादी की है। मेरा लाडला रहा है वो, चौहान खानदान की सबसे बड़ी बहू लेकर आया है। मैं आशीर्वाद नहीं दूंगी तो कौन देगा? गायत्री देवी ने जिद पर अड़ते हुए कहा। वो सब आपस में बहस कर रहे थे, तभी वेद वहां पहुंचा। आते ही उसकी नज़र सीधे अंकुश पर गई। उसे समझने देर नहीं लगी कि अचानक गायत्री देवी को उसकी पत्नी को आशीर्वाद देने का भूत सिर पर सवार कैसे हो गया। वेद ने अंकुश को सर्द निगाहों से देखा तो वो थोड़ा सकपका गया था। वेद को देखते ही गायत्री देवी ने हल्का मुस्कुराकर कहा, ये लो, आ गया मेरा राजा बेटा। वेद, समझाओ इन लोगों को, सब तुमसे उम्र में तो छोटे हैं ही, लेकिन दिमाग भी इनका छोटा रह गया, अपने बड़ों से बात तक करने की तहजीब नहीं है। वंश या नव्यांशी में से कोई कुछ कहता उससे पहले वेद ने उन्हें आंखों के इशारों से चुप रहने को कहा। वेद आगे आया और उसने गायत्री देवी के पैर छुए। गायत्री देवी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा,
मेरा बेटा खूब तरक्की करे, अब तो शादी भी कर ली है। लगा था कि तुम शादी नहीं करोगे तो तुम्हारे बच्चे का मुंह देखे बिना ही मर जाऊंगी, लेकिन देख लो, नसीब में ये भी लिखा हुआ है। पर तुम अकेले क्यों आए हो? मेरी बहू कहाँ है? दादी, वो आराम कर रही है और मैं नहीं चाहता कि आप उससे मिलो, वेद ने संजीदगी से कहा। उसकी बात सुनकर गायत्री देवी चौंक गई। इस घर में इकलौता वेद ही था जो उनसे ठीक से बात करता था, और आज वो भी अपनी पत्नी का चेहरा दिखाने से इनकार कर रहा था। शादी के बाद तू भी बदल गया है क्या? देख, तू हमेशा से मुझे समझता था कि मैंने तेरे चाचा जी का साथ क्यों दिया। एक तो तू इतने सादे तरीके से शादी करके आ गया, ऊपर से अब अपनी पत्नी का चेहरा दिखाने से इनकार कर रहा है। मैं भी तो देखूं कौन सी हूर की परी लेकर आया है जो सबसे छुपा कर रखा है, गायत्री देवी बोली और इधर उधर देखने लगी। उसने गीतिका को इशारे से व्हीलचेयर चलाने को कहा, लेकिन वेद ने बीच में अपनी टांग अड़ा दी थी। वेद का चेहरा देखकर गायत्री देवी को समझ आ गया था कि वो ऐसे नहीं मानने वाला था। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, सच में सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए आई हूँ, यकीन नहीं है क्या? आज यकीन नहीं है। अगर आप अपनी केयरगिवर के साथ आती तो यकीन कर लेता, लेकिन दुश्मनों के साथ आई है, एक कदम तक आगे नहीं बढ़ाने दूंगा। वेद ने गायत्री की आंखों में आंखें डालकर सख्त आवाज में कहा, मानो उसे किसी चीज का डर ना हो। वेद की बात सुनकर गीतिका और अंकुश दोनों ही ठिठक गए थे। गीतिका उसे जवाब देना चाहती थी, लेकिन अंकुश ने उसका हाथ पकड़ लिया। अंकुश आगे आया और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, हम दुश्मन ही सही, लेकिन हमारी नीयत तो बुरी नहीं है। अब उसे सबसे मिलाने में शर्म आ रही है। उस वक्त तुम कहाँ थे जब किसी और की पत्नी को तुमने अपनी पत्नी बना लिया? अंकुश की बात सुनकर नव्यांशी, आराध्या और वंश हैरान रह गए। उन्हें अभी भी वेद की शादी का सच नहीं पता था। वेद कुछ कहता उससे पहले गीतिका बोली, इस तरह मत देखिए, अंकुश बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे तो हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन आपके उसूल देखकर मैं हमेशा सबको आपकी मिसाल दिया करती थी। पर आपने ये क्या किया? वो राजावत खानदान की होने वाली बहू थी और आपने उससे शादी कर ली। कम से कम उम्र का तो लिहाज कर लिया होता, दो दिन पहले ही सिर्फ 21 साल की हुई है वो। गीतिका इस सच को नहीं जानती थी कि वेद और शिवांशा की सच में शादी नहीं हुई है। उनकी बातों से वहां नीचे अच्छा खासा तमाशा लग गया था। चौहान फैमिली के लिए ये बात नहीं थी कि वेद ने जिससे शादी की है वो राजावत खानदान की होने वाली बहू थी। उम्र का छोड़ो गीतिका, पहले इस शादी का तो सच जान लो। वेद ने उस लड़की से जबरदस्ती शादी की है ताकि... अंकुश बातों ही बातों में जानबूझकर शिवांशा का सच उनके सामने खोलने जा रहा था।
उसकी बात पूरी होने से पहले ही वेद ने उसे काटते हुए कहा, मैंने उससे जबरदस्ती शादी नहीं की है, हम दोनों एक दूसरे को पहले से पसंद करते थे। जबरदस्ती तो तुम लोग उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते थे, तभी उसने कॉल करके मुझे बुलाया। मैं इस तरह जल्दबाजी में शादी नहीं करना चाहता था, पर जिस तरह तुम शिवांशा के साथ जबरदस्ती कर रहे थे, मुझे जल्दबाजी में उससे शादी करनी पड़ी। क्या लगता है अंकुश राजावत, शिवांशा जैसी लड़की तुम्हारे पागल भाई से शादी क्यों करेगी? अंकुश का मुंह बंद हो गया था। अगर वो आगे कोई राज खोलता तो बहुत सी बातें सामने आ जाती, और उनमें एक सच ये था कि सालों पहले वेद के माँ बाप की मौत की साजिश में राजावत फैमिली का हाथ भी था। ये सीधे सीधे अपनी बर्बादी को दावत देने जैसा था, इसलिए अंकुश ने अपना मुंह बंद कर लिया। वहीं उनकी बहस को बंद करवाने के लिए गायत्री देवी ने बीच में तेज आवाज में कहा, बस करो बहस करना, अपनी पत्नी को बुलाओ वेद, अब वही सच बताएगी। उसे किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, जिसे जो समझना है समझ सकता है। आज का सच ये है कि वो शिवांशा वेद सिंह चौहान है, और किसी की इतनी औकात नहीं जो वो उसे नजर उठाकर देख भी सके। वेद ने तेज सख्त आवाज में कहा, उसका इशारा सीधा सीधा अंकुश की तरफ था जो उस रात शिवांशा के साथ जबरदस्ती करने वाला था। वेद की बातों ने उनके मुंह बंद करवा दिए थे, साथ ही वंश, आराध्या और नव्यांशी भी चुप हो गए थे। ठीक है, कोई उससे सफाई नहीं मांगेगा, लेकिन मुझे क्या उसका चेहरा देखने तक की इजाज़त नहीं है? अगर शादी तुम दोनों की खुशी से हुई है तो उसे इस तरह बंद कमरे में क्यों रखा है? लेकर आओ सबके सामने। चौहान फैमिली की तो एक छोटी सी पूजा तक मीडिया कैप्चर करने पहुंच जाता है। फिर वेद सिंह चौहान ने अभी तक कोई रिसेप्शन पार्टी देकर अपनी पत्नी को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस्ड क्यों नहीं किया? गीतिका ने कहा, भाई इनका आप बहुत हो रहा है, मैं भाभी को लेकर आती हूँ, नव्यांशी गुस्से में बोली। वेद ने जवाब में कुछ नहीं कहा, वो नहीं चाहता था कि शिवांशा गलती से भी अंकुश के सामने आए। वेद को शिवांशा के दिल में अंकुश को लेकर जो डर था उसके बारे में कुछ पता नहीं था, पर फिर भी वो महसूस कर सकता था कि उसकी वजह से वो नींद तक में डर कर उठ जाती थी। नव्यांशी अपनी बात खत्म करके दूसरी तरफ पलटी ही थी कि सामने से शिवांशा आ गई। उसने खाना बीच में ही छोड़कर पहले अपनी साड़ी को सही किया और नीचे आई।
शिवांशा की नजरें झुकी हुई थी, इसलिए उसने ठीक से सामने नहीं देखा था। नव्यांशी उसके पास पहुंचकर मुस्कुराकर बोली, अच्छा हुआ भाभी जो आप खुद नीचे आ गईं, मैं आपको बुलाने के लिए आने ही वाली थी। नव्यांशी ने शिवांशा का हाथ पकड़ा और उसे गायत्री देवी के सामने लेकर गई। नव्यांशी ने शिवांशा को दिखाते हुए काफी प्राउडली कहा, आपको मेरी भाभी का चेहरा देखना था ना, तो देख लीजिए, हर लिहाज में ये मेरे वेद भैया के लायक हैं। शिवांशा ने झुककर गायत्री देवी के पैर छुए। गायत्री देवी ने उसे आशीर्वाद दिया। जैसे ही शिवांशा पैर छूकर ऊपर खड़ी हुई, उसकी नज़र अंकुश पर गई तो उसके चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए थे। पास में वेद खड़ा था, शिवांशा का हाथ खुद बखुद वेद की कलाई पर चला गया था। अंकुश उसे अजीब नज़रों से घूर रहा था तो वेद शिवांशा के आगे आ गया। वेद ने गायत्री देवी की तरफ देखा और सख्त आवाज में कहा, अगर आपका देखना दिखाना हो गया है तो आप यहाँ से चले जाइए। हाँ हो गया है, लेकिन अभी बहू को परखना भी बाकी है। तुम लोगों को देखकर साफ पता चलता है कि किसी को रस्मों की कोई जानकारी नहीं होगी। जाओ बहू, जाकर मेरे लिए कुछ मीठा बनाकर लेकर आओ, गायत्री देवी बोली। वो मेरी वाइफ है, कोई हाउस हेल्पर नहीं जो आपके लिए मीठा बनाएगी। वैसे भी आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। अब जो बात करनी होगी मुझसे कीजिए। शिवांशा तुम अपने रूम में जाओ। वेद ने उन्हें सीधे सीधे मना कर दिया था। कुछ भी करने से पहले शिवांशा ने आराध्या और नव्यांशी की तरफ देखा तो उन्होंने पलके झपकाकर उसे वहां से जाने का इशारा किया। शिवांशा अभी कुछ भी करके वहां से हटना चाहती थी। उसे ठीक से घर के बारे में पता नहीं था और ना ही वो सबके सामने लड़खड़ाते हुए वो सीढ़ियां नहीं चढ़ाना चाहती थी। ये सोचकर शिवांशा लिविंग रूम के ही एक दरवाजे से बाहर पहुंच गई थी। वो नहीं जानती थी कि वो दरवाजा उसे घर के गार्डन एरिया में लेकर जाएगा। वही मौका देखकर अंकुश भी कॉल का बहाना बनाकर बाहर निकल गया था। जैसे ही शिवांशा गार्डन एरिया में खोई हुई नजरों से इधर उधर देख रही थी, अंकुश उसके पास आया और उसका मुंह पकड़कर उसे दीवार के लगा दिया था। अचानक अंकुश को अपने सामने देखकर शिवांशा डर के मारे कांपने लगी थी। उसके चेहरे पर डर देखकर अंकुश ने तिरछी मुस्कराहट दी। अचानक अंकुश ने शिवांशा के चेहरे को छोड़ दिया था तो वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अंकुश ने अपने पॉकेट से मोबाइल निकाला और किसी को वीडियो कॉल किया। सामने स्क्रीन पर मौजूद नज़ारा देखकर शिवांशा जोर जोर से रोने लगी थी। स्क्रीन पर उसका भाई रोहन मौजूद था, जिसे बुरी तरह से पीटा गया था। एक आदमी उसे चाकू की नोक पर लेकर खड़ा था। डर के मारे वो जोर जोर से रो रहा था। ऊपर से अपने सामने शिवांशा को देखकर वो रोते हुए बोला, दीदी दीदी प्लीज बचा लो मुझे, ये मुझे बहुत मारते हैं। शिवांशा कुछ कह पाती उससे पहले अंकुश ने कॉल कट कर दिया। उसने शिवांशा की तरफ देखा और सर्द आवाज में कहा, खत्म कर दो वेद सिंह चौहान को। तुम जानती हो तुम्हें ऐसा करना होगा और ना कहने का कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हें 2 दिन का टाइम दे रहा हूं। अगर वेद सिंह चौहान के मरने की खबर नहीं आई तो इस लड़के की लाश तुम्हें जरूर मिल जाएगी, वो भी इसी आंगन में मिलेगी। एक बार फिर वही धोखे की दास्तान लिखी जा रही थी, जहां प्यार के रिश्ते बनाकर करीबी बढ़ाई गई और फिर जान ली गई। अंकुश जानता था शिवांशा को कैसे मैन्युपुलेट करना है और वो इसी की पूरी तैयारी करके वहां आया था। अंकुश का असली चेहरा उससे बेहतर कौन जानता था। शिवांशा के पास ना कहने का कोई चांस ही नहीं था। अंकुश, क्या लगता है, शिवांशा हाँ कहेगी और अंकुश के कहने पर वेद की जान ले लेगी? चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा।